તારીખ 29/11/1993 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન.
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 254. यह पत्र खंगात के मुमुक्ष भाइयों पर लिखा गया है, पूरे मुमुक्ष समूह को लिखा गया है. हाँ, मुमुक्षुओं को लिखा गया है, ऐसा लेकर के उसका स्वाध्याय करना चाहिए. सारा पत्र तो लंबा छोड़ा है, बहुत भरा है, लेकिन एक घंटे में उसकी जो सार सार बातें हैं वो अपन ले लेंगे. इधर में तो चला था इसका स्वाध्याय. पत्र का जो हेडिंग है उसमें वो जो कहना चाहते हैं कि आत्मा असंग तत्व है और असंग स्वरूप में असंग भाव से निसंग भाव से रहने से ही अशुद्धि से बच सकते हैं, दोष से बच सकते हैं या आकुलता से दुख से बच सकते हैं. ऐसी निसंगता कब प्राप्त होती है? जब निर्भयता होती है तब. और निर्भयता कब प्राप्त होती है? कि स्वरूप की निशंकता होवे तो. अपना आत्मस्वरूप अनंत सुख से भरा हुआ अव्याबाद सुख स्वरूप है. सुख स्वरूप है उतना ही नहीं, अव्याबाद सुख स्वरूप है. जिस सुख को बाधा पहुंचाने को जगत में कोई समर्थ नहीं है. ऐसी स्वरूप की निशंकता अव्याबाध स्वरूप की आवे तो कोई मुझे बाधा पीड़ा दुख पहुंचा सकेगा उसकी शंका नहीं रहती. ऐसी निशंकता आने से निर्भयता रहती है और निर्भयता का दुख मिट जाता है. वरना संसार के सभी प्राणियों को, सब संसार के सभी जीवों को मरण का भय तो हमेशा हमेशा विचार करके बगैर विचार करके रहता ही है. हमेशा मरण का भय रहता है, रोग का भय रहता है, पीड़ा का भय रहता है, चोरी का भय रहता है, लूट का भय रहता है, सभी प्रकार का भय क्यों रहता है? कि अपना अव्याबाद स्वरूप में निशंकता नहीं आई इसलिए. भय का दुख की परिणति सभी जीव को निरंतर वर्तती है. इस दुख को छुड़ाने के लिए निशंकता चाहिए स्वरूप की. और ऐसा निशंक और निर्भय जो हो सकता है उसी को ही निशंग दशा में रहने का कोई आपत्ति तकलीफ नहीं होती है. वरना वो निशंग नहीं रह सकता. किसी न किसी का संग चाहिए उसको, बिना संग वो रह सकता नहीं है. ये पत्र के विषय के संदर्भ में ये बात लिखी है. अब लिखते हैं के प्रकृति के विस्तार से जीव के कर्म अनंत प्रकार के विचित्रता से प्रवर्तन करते हैं और इसलिए दोष के प्रकार भी अनंत भाषित होते हैं. क्या है कि जगत में जो भी जीव के अनंत प्रकार के दोष हैं, सभी जीव में दोष हैं. संसारी जीव कोई निर्दोष नहीं होता, कुछ न कुछ दोष तो इसमें होता ही है. निर्दोष होवे तो वो सिद्ध परमात्मा हो जाए. सर्वथा वो निर्दोष है, ये बात कोई कहे कि मैं तो सर्वथा निर्दोष हूं तो ये बात मानने लायक नहीं है. अनंत प्रकार के दोष है, इसका क्या कारण है? अनंत प्रकार की कर्म प्रकृति है, कर्म प्रकृति का उदय आता है और जीव उसमें जुड़ जाता है और उसको दोष होता है। जैसे क्रोध प्रकृति का उदय आया, जीव को क्रोध हो जाता है। मान प्रकृति का उदय में जुड़ने से जीव को मान रहता है। लोभ प्रकृति का उदय में जुड़ने से जीव को लोभ रहता है। उस तरह से माया प्रकृति में जुड़ने से मायाचार होता है। तो ये क्रोध मान माया लोभ के जो दोष हैं, इनके पेटा भेद लेवे तो अनंत दोष का प्रकार है और सामने ऐसी प्रकृतियों का भी अनंत प्रकार है। उसको गौण करके कहते हैं, परंतु परंतु कह करके क्या कहना है कि ये सब बात गौण है। अभी सबसे बड़ा दोष की बात दिखाना चाहते हैं कि परंतु सबसे बड़ा दोष यह है कि जिससे तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न ही न हो अथवा सामान्य मुमुक्षुता भी ही उत्पन्न न हो, ये सबसे बड़ा दोष है। नास्ति से लिया है। मुमुक्षुता किसको कहेंगे वो नीचे बताएंगे, लेकिन मुमुक्षुता न होना ये सबसे बड़ा दोष है। चोरी किया वो बड़ा दोष है ऐसा नहीं लिया, खून किया किसी का वो बड़ा दोष है ऐसा नहीं बोला क्या, और बड़ा इंडस्ट्री लगा करके हिंसा बहुत कर दी ये सबसे बड़ा दोष है ऐसा नहीं किया कि जिसमें हजारों जीव होगा। अरे कत्ल खाना लगाया ये सबसे बड़ा दोष है वो भी नहीं कहा। क्या कहा? बहुत गंभीर बात है कि जीव को मोक्ष की भावना नहीं होती है, पूर्ण शुद्धि की भावना नहीं होती है, पूर्ण शुद्धि का ध्येय नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है, यही सबसे इसका बड़ा दोष है। क्यों? कि इसके नहीं होने से जीव एक दिन कत्ल खाना भी लगाएगा। आज कपड़े का व्यापार करता है, कल कत्ल खाना लगाएगा, क्योंकि कपड़े के व्यापार में भी मारा ले को भी पैसा चाहिए और कत्ल खाने वाले को भी पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो जिस काम से पैसा मिले उसे कर लो, ये अभिप्राय बन जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे कैसे भी एक दफे मोक्ष का ध्येय बांध करके मुमुक्षु हो जाओ तो फिर आगे की लाइन चालू हो जाएगी। अगर वो दिशा ही नहीं मिली तो फिर जो भी करेंगे धार्मिक प्रवृत्ति सब करेंगे और किया भी है। क्या है? यम नियम संयम आप कियो पुनः त्याग विराग अथाग लियो। अथाग किया है, यम नियम संयम त्याग वैराग पूजा भक्ति यात्रा अथाग किया है, थोड़ा नहीं किया है। अनंत काल में जितना किया है इसकी गिनती करे तो अथाग किया है। लेकिन मुमुक्षुता एक दफे भी सच्ची मुमुक्षुता खरी मुमुक्षुता नहीं आई, यही सबसे बड़ा दोष है जो आगे की दोषों की परंपरा का सर्जक हो जाता है। प्राय मनुष्य आत्मा किसी न किसी धर्म मत में होती है। मनुष्य में तो संप्रदाय, कुछ न कुछ संप्रदाय में मनुष्य का जन्म होता है, कोई जैन में, कोई बौद्ध में, कोई मुसलमान में, कोई वैष्णव में, कोई क्रिश्चियन में। त्रियंचो में संप्रदाय नहीं, देव में संप्रदाय नहीं, नारकी में संप्रदाय नहीं, चार गति में मनुष्य में संप्रदाय होता है, धर्म संप्रदाय, धर्म मत, और उससे वह धर्म मत के अनुसार प्रवर्तन करता है। जैसा जैसा अपना कुल धर्म है उस कुल धर्म में वो फंसा रहता है। वो कभी चेक नहीं करता कि मैं जो जिस धर्म मत में हूं वो सही है या कोई भी उसमें गलत बात है, ऐसा कोई कभी उसका वेरिफिकेशन चेकिंग नहीं करता कि मैं जो करता हूं वो ठीक है या उसमें कोई मेरे नुकसान है या नहीं है, ऐसा कभी वो विचार करता नहीं। पूर्व संस्कार से जो धर्म मत में उसका जन्म हुआ है उसी धर्म मत की प्रणाली का अनुसार, परंपरा अनुसार वो प्रवृत्ति करता है। और ऐसा मानता है, परंतु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है। सामान्य मान्यता आम समाज में ऐसी है कि अपने अपने धर्म का जो भी कुल धर्म अनुसार प्रवृत्ति करे उसका नाम मुमुक्षुता, उसका नाम धार्मिकता। मुमुक्षुता मैंने धार्मिकता, वो बात ठीक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मुमुक्षुता क्या है? मुमुक्षुता यह है कि सर्व प्रकार की मोहाशक्ति से अकुला कर एक मोक्ष के विषय में ही यत्न करना। क्या परिभाषा मुमुक्षुता के बताई? मुमुक्षुता में मोक्ष के लिए प्रयत्नवान रहना, इसका नाम मुमुक्षुता है। जिसको मोक्ष का ध्येय निश्चित होता है, मोक्ष का लक्ष्य जिसको हो जाता है, उसके फिर आगे के परिणाम मोक्ष के लिए प्रयास वाला रहता है, फिर संसार के लिए प्रयास वाला नहीं रहता है। और जहां तक पूर्ण शुद्धि का ध्येय नहीं है, वहां तक अनादि से संसार का ध्येय है, तो धार्मिक प्रवृत्ति में भी वो संसार की अपेक्षा रखता है कि मैं पूजा करूंगा तो मुझे अच्छा पुण्य बनेगा और इसका फल में मुझे सुखी हो जाऊंगा। मैं दान दूंगा तो मुझे आगे ज्यादा मिलेगा, 10,000 दिया है तो 10,00,000 मिलेगा। जैसे हनुमान जी को तेल इतना चढ़ाएंगे तो उतना मिलेगा, माता जी को इतना श्रीफल लगाएंगे, एक श्रीफल देंगे तो उतना मिलेगा, वो अपेक्षा से जाते हैं ना। ऐसे जीव को संसार की अपेक्षा धर्म के क्षेत्र में रहता है। जैसे दुकानदार को रहता है कि मैं व्यापार करूंगा तो पैसा मिलेगा, ये दुकानदारी मंदिर में हो जाती है, बाजार में तो होती ही है, लेकिन मोक्ष का जिसको ध्येय नहीं, उसको अनादि से संसार का सभी जीव को है ध्येय, पर वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वार में कहीं भी जाता है तो वहां दुकानदारी करने लगता है। भीतर में वो अभिप्राय रहता है कि मैं ये धर्म करता हूं तो धर्म के फल में मुझे प्रतिकूलता हट जाएगी और अनुकूलता हो जाएगी। किसी को धन चाहिए, किसी को कुटुंब परिवार चाहिए, किसी को निरोगता चाहिए, किसी को कहीं चाहिए, जैसी जैसी प्रतिकूलता अनुकूलता की कल्पना है वो कल्पना में लगता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण उसने कभी मुमुक्ष मोक्ष का ध्येय निश्चित किया नहीं है। मोक्ष माने पूर्ण शुद्धि, पूर्ण पवित्रता, उसी को मोक्ष कहते हैं। पुण्य को ही सारी दुनिया धर्म मानती है, जो कि पुण्य धर्म नहीं है किंतु अधर्म है। धर्म तो नहीं है तो अधर्म है। जैसे पाप अधर्म है वैसे पुण्य भी अधर्म है। पुण्य को लौकिक रूप से धर्म माना है, मोक्ष के मार्ग में पुण्य को धर्म नहीं माना है, वो अलौकिक मार्ग है। लौकिक मार्ग नहीं है, यह अलौकिक मार्ग है। तो एक तो बात वो लिया कि मोक्ष के लिए, पूर्ण शुद्धि के लिए ही प्रयत्न करना, इसी का नाम मुमुक्षुता है। और ऐसा जो करने वाला है, इस प्रकार का प्रयास करने वाला जो जीव है, उसको मोहाशक्ति के, सर्व प्रकार की मोहाशक्ति में उसको अकुला मैंने उसका दम घोंटता है। क्या है? उसका दम घोंटने लगता है, वो अकुला कर उसका परिणाम होता है। सामान्यतया संसारी जीव को मोहाशक्ति के प्रसंग में रस आता है, अच्छा लगता है। जबकि जिसका ध्येय बदल गया, जिसको शुद्धि चाहिए अशुद्धि नहीं चाहिए, उसको तो ऐसे मलिन परिणामों में अपना दम घोंटने लगेगा। यही इसका लक्षण है। ध्येय निश्चित हुआ या नहीं हुआ वो कैसे मालूम पड़े? कि महाशक्ति के काल में दम घोटने लगे तो मालूम पड़ जाएगा, अगर मजा आएगी अच्छा लगता है तो अभी वो की वो स्थिति है जो अनादि काल से है, वो की वो स्थिति है। देखो कुछ त्याग नहीं किया, ये तो मुमुक्षुता का प्रारंभ है। ध्येय निश्चित होना ये तो मुमुक्षुता का प्रारंभ है। फिर भी इसमें सबसे बड़ी बात कौन सी आई कि सर्व प्रकार की महाशक्ति से वो हटना चाहता है, उसका प्रयास हटने का रहता है। भीतर में बिना त्याग भीतर में रस टूटता है, आसक्ति का रस टूटता है, पुद्गल प्रति के परिणाम वाला रस उसका टूट जाता है। ये सबसे बड़ा काम हुआ। हम तो इसलिए वो कहते हैं यहां कि जिसको मोक्ष का ध्येय है उसको संसार का ध्येय नहीं होता, क्योंकि प्रतिपक्ष में है। तो जिसको संसार का ध्येय नहीं है उसको संसार की महत्वाकांक्षाएं, संसार की अपेक्षाएं और संसार की आशाएं हो सकती ही नहीं। जहां तक ये है वहां तक ये ध्येय निश्चित होने वाला नहीं है। तो हमें संसार खारा लगना चाहिए, जैसा नमक कैसा लगता है ऐसा संसार खारा लगना चाहिए। जब भी मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है, लोग त्याग को मानते हैं और समझते हैं लेकिन मुमुक्षुता को नहीं समझते हैं कि उसमें कितनी तैयारियां होती है, उसका प्रारंभ में कितनी तैयारी है। कि एक इतनी बड़ी लात लगाता है वो
जगत को, लात
सारे संसार को किक लगा देता है कि नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए इसमें से, मुझे
कुछ नहीं चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए। मगर जब तो मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है फिर उसमें एक दर्शन का दिल्ली तो बहुत दूर है, ये दिल्ली तो बहुत दूर है। अब तो प्रारंभ कैसे होता है वो दिखाते हैं श्रीमद जी। कितने साल की उम्र में लिखा है? अपनी 24 साल की उम्र में लिखा है, आपके बराबर है करीब करीब है। दूसरा नंबर नीरव लगा आता है, उसका भी उतना ये वो एज है। उस उम्र में वो बात, वो तो तीव्र मुमुक्षुता में आए थे। अभी तो बात चल रही है मुमुक्षुता की, 24 साल की उम्र में वो तीव्र मुमुक्षुता में थे। तीव्र मुमुक्षुता में ज्ञान दशा, ज्ञान दशा में क्षणे क्षणे प्रति समय मोक्ष के प्रति अनन्य परिणाम से जिसके परिणाम गतिमान होते हैं उसी को तीव्र मुमुक्षुता कहते हैं, जो ज्ञान दशा में होते हैं। मुमुक्षु दशा में उतना फोर्स नहीं होता, उतना पुरुषार्थ नहीं होता। ये तो मुमुक्षुता की बात चलती है, वो तो तीव्र मुमुक्षुता में आकर के लिखते हैं। मुमुक्षु तो इनसे बहुत बड़े बड़े थे उम्र में, जो मुमुक्षु लोग थे ये तो 24 साल की उम्र के थे। मुमुक्षु तो थे करीब कोई 40 साल के, कोई इसे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल तक बड़े बड़े मुमुक्षु थे इनके संग में जो थे, वो उनको लिखते हैं। वो क्या कहा फिर से कि संसार की महत्वाकांक्षा पर जिसको बड़ी चौकड़ी लगाना हो, आशा और अपेक्षाओं पर जिसको चौकड़ी लगाना हो, तब तो मुमुक्षुता का प्रारंभ होगा। वरना जिन मार्ग की मुमुक्षुता जिसको कही गई है सच्ची मुमुक्षुता, उसका प्रारंभ नहीं होता। मार्ग का प्रारंभ तो बहुत आगे की बात है, अब तो इसके पहले लायक होना, मार्ग के पात्र होना, मार्ग के लायक होना, इसके लिए ये सबसे पहली शर्त या कंडीशन है। चाहे वो कड़ी लगे बड़ी लगे कुछ भी लगे, लेकिन ये शर्त है। इसको होना हो तैयार होना नहीं होना हो तो संसार बहुत लंबा चौड़ा अनंत काल रहने वाला है, उसमें रुलना भटकना चालू रह जाएगा। और तीव्र मुमुक्षुता यह है कि अनन्य प्रेम से मोक्ष के मार्ग में प्रतिक्षण प्रवृत्ति करना, ये ज्ञान दशा में होता है। यहाँ तीव्र मुमुक्षुता के विषय में बताना नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञान दशा की बात है, ये पत्र का विषय नहीं है यहाँ पर। परंतु यहाँ तो मुमुक्षुता के विषय में बताना है, ये पत्र में तो मुमुक्षुता के विषय में हमको कुछ लिखना है, आप लोगों के लिए लिखना है, ऐसा करके ये पत्र लिखा है। उसके उत्पन्न होने का लक्षण है, क्या लक्षण है मुमुक्षुता होती है कब, कि मुमुक्षु जीव अपना दोष देखने में अपक्षपातता रखता है, मैंने उसको अपने दोष दिखाई देने लगता है, मेरे में ये दोष है, मेरे में ये दोष है, मेरे में ये दोष है, ये दिखाई देना लगता है। उसके पहले क्या हालत होती है कि अपने को तो अपना दोष नहीं समझ में आता है, दिखने में नहीं आता है, लेकिन कोई दूसरा दुखावे तो उस पर क्रोध कर लेता है,
उसने ऐसा किया इसके वास्ते में
वो उसको बुरा लगता है कि मुझे मुझको गिराता है या मुझको ये डाउन करता है या मुझको बदनाम करता है या मेरी इज्जत खराब करता है, ऐसा उनको लगता है। वहां तो मुमुक्षुता का प्रारंभ, मुमुक्षुता का लक्षण ये बताया है। देखो यहाँ तो लक्षण से शुरुआत किया है कि मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण, जब मुमुक्षुता उत्पन्न हुई तो सबसे पहले उनको अपना दोष दिखने में लगता है, मतलब पक्षपात हुए तो अपना दोष दिखे नहीं, क्योंकि वो तो अपना दोष को दोष मानता ही नहीं, वो तो ऐसा ही मानता है कि उस कारण से ऐसा होता है या उस कारण से ऐसा होता है या उस कारण से होता है,
अपने बालों का भी नहीं मानता है, जो अपने उसके होते हैं उनका भी नहीं मानता, अपने बालों को अपने सगे संबंधियों
का, हाँ
दोष बताया तो उनका तंग नहीं मानता,
सब पर गर्म हो जाएगा वो, तुम कौन कहने वाला, तुम मेरे से कौन बड़े हो, तुम कौन कहने वाला, क्या तुम निर्दोष हो, फिर बोल गए तुम्हारे में ऐसा नहीं होता है क्या, मेरे में ही होता है क्या, सब जानते हैं ना क्या क्या होता है। ये गड़बड़ी है, वहां तो मुमुक्षुता का लक्षण नहीं है,
लक्षण
पूजा भक्ति करता है उतना तो लक्षण है कि नहीं, स्वाध्याय करता है उतना लक्षण है कि नहीं है, कि ये मुमुक्षुता का लक्षण है ही नहीं, स्वाध्याय करना, पूजा भक्ति करना, दया दान करना, जब तप यात्रा करना, ये कोई मुमुक्षुता का लक्षण
नहीं है,
नहीं है। लिया इधर कुछ नहीं लिया,
कुछ नहीं लिया,
नहीं जानते थे वो, उन्होंने तो ये काव्य लिखा, बाद में लिखा है, बहुत नजदीक में लिखा है, 24 के साल में उम्र में लिखा है, 265 ये पत्र लिखा उन्होंने अषाढ़ सुदी आठम को, और ये लिखा है उन्होंने 265 भादवे में लिखा है, ये नियम भादवा सुदी आठम, ये अषाढ़ सुदी आठम और ये भादवा सुदी आठम, सुदा अषाढ़ श्रावण दो महीने के बाद ये पत्र लिखा है। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रियो, त्याग करके जंगल में चला गया, मुमुक्षुता नहीं आई, ऐसा कहा है क्या, दृढ़ आसन पद्म लगाई दियो मौन रियो, आसन लगा दिया, योग योग में ध्यान में चला गया, क्या मन पौन निरोध सुबोध कियो, प्राणायाम पवन को निरोध कर दिया, हठ योग प्रयोग सुतार भयो, सब हट किया है इस प्रकार का, जब भेद जपे तप त्यों ही तपे, जब तप सब कुछ किया, पर उधर से ही उदासी लही सब के त्याग कर दिया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाना भी नहीं है, सब शास्त्र में कहे हैं धारी है, शास्त्र सब पढ़ लिए, मत मंडन खंडन वेद लिए, वो मिथ्या है, वो ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा वो साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ जरूर न पड़ो। कुछ तो आया होगा, कुछ तो मिला होगा, कि कुछ नहीं आया है। चौकड़ी लगा दिया, इतना इतना किया इस पर चौकड़ी लगा दिया। अब क्यों न विचारत है मन से कछु और रहा उस साधन से, जिसको तुमने साधन माना उससे कोई दूसरी बात है ये मोक्ष मार्ग की। सदगुरु कोयन भेद लहे मुख आगल है कि बात कहे, इसके लिए तो तुझे सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। बाकी सब तू करता है अपनी मर्जी से। ये क्या करता है कि स्वच्छंद के सिवा कुछ नहीं करता है, ये सब स्वच्छंद है। हाँ हिंदी में एक काव्य बनाता था, गुजराती में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे, बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, वो भी हिंदी में है, हिंदी में लिखा है। सेवे सदगुरु के चरण सो पावे साक्षात। वो तो इसके पहले लिखा है, ये 265 है तो ये इसके पहले वाला है, 258 है, बिना ने वाला पद इसके पहले लिखा है, ये अषाढ़ में लिखा है, वो भादवे में लिखा, तो ये तो अषाढ़ में ही लिखा है। बुझी चहत जो प्यास है बुझन की रीत, प्यास लगी है मेरा कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है, ऐसी प्यास लगी है तो इसकी रीत है। कौन सी रीत है तो पावे नहीं गुरु गम बिना, यही अनादि स्थित, अनादि से वस्तु स्थिति है, स्थित मैंने वस्तु स्थिति है, यही नहीं है कल्पना यही नहीं विभंग। हिंदी में लिखा है सब, कई नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग, नहीं दे तू उपदेश को। पहले उपदेश मत देना, नहीं दे तू उपदेश को, कितना खबर है उसको कि जीव क्या क्या करने लग जाता है, सब पता है। नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश, सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। जप तप और व्रतादि सब तहां लगी ब्रह्म रूप, तुझे भ्रमणा हो गई है कि मैं जप करता हूं, तप करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, पूजा करता हूं, ये सब तहां लगी ब्रह्म रूप, जहां लगी नहीं संत की पाई कृपा रूप। संत की कृपा मतलब क्या, पात्र होता है उस पर संत को प्रसन्नता आती है, ज्ञानी को प्रसन्नता आती है, वो पात्र नहीं हुआ तो ये सब तेरी भ्रमणा है। पाया की ये बात है, ये नीम की बात है, पाया मैंने नहीं। निज छंदन को छोड़, स्वच्छंद को छोड़ दे, पीछे लाग सद पुरुष के तो सब बंधन तोड़। एक काव्य में 3 दफे सद पुरुष को पीछे जाने का लिखा है।
और गजब का
है, हाँ बहुत गजब का, तो कितने भाव का अनुभव का निचोड़ दिया है एक एक पत्र में, अपने पूर्व के बहुत से भाव के अनुभव का निचोड़ दिया है। वो सब कर चुके हैं, बहुत भटकते थे, बहुत भटके हुए हैं, और जाति स्मरण ज्ञान था पूर्व भव का, तो पता चल गया कि क्या क्या गलती मैंने किया था, तो दूसरा नहीं करे इसलिए लिख गए कि दूसरे जीव ऐसी गलती में नहीं रहे।
गलती नहीं, यही गलती पर
है, हाँ यही गलती पर है, वही निकालने का है अभी। सब बहुत गड़बड़ किया है, थोड़ा नहीं किया है, बहुत गड़बड़ किया है। वो कहते हैं कि अपना दोष देखने में अपक्षपात रूप से जरा भी बचाव नहीं करके, थोड़ा भी इसका पक्ष नहीं करके, पक्ष करना मैंने बचाव करना, ऐसा जब अपना देश दोष देखने का भीतर में होता है तब मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है। और इस कारण से ऐसे अपने दोष देखने से स्वच्छंद का नाश होता है, अपना जो मान है वो मिटता है। स्वच्छंद में सबसे बड़ा मान होता है। तो अपना दूसरे प्रकार से नहीं होता है। तो ये जहर समझ करके उसको छूना भी नहीं, एक जहर की बोतल को
भी नहीं,
एक जगह से दूसरी जगह रख देते ना तो 3 दफे साबुन से हाथ धो देते हैं। जहर को नहीं छुआ, उसकी बोतल को छुआ तो भी, ऐसा लेना है। इस कारण स्वच्छंद का नाश होता है। और जब स्वच्छंद का नाश होता है थोड़ा या बहुत, एक साथ तो सब नहीं होगा, थोड़े थोड़े उसका नाश होता जाएगा। जितना नाश होगा, जहां जितना स्वच्छंद की जितनी हानि होगी वहां उतनी बोध बीज के योग्य भूमि होती है। भूमि मैंने पात्रता, लायकात आती है। किसकी लायकात आती है? कि आत्मज्ञान का बीज बोने की ये भूमि होती है। तो बात चलती है ना, पहले भूमि का तो खिड़ान करना के नहीं, पहले मंद कषाय करे, पूजा भक्ति उपवास करे तो फिर ज्ञान मिले, इसके पहले ज्ञान नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है।
वो
भूमि का खिड़ान इस तरह से नहीं होता है, ये भूमि इस तरह से तैयार होती है। देखो क्या बताया, अपने अनुभव से बात लिखा है कि पहले ज्ञान प्राप्ति के पहले जो पात्रता यानी लायकात आती है वो कैसे आती है, किस तरह से आती है? कि जो अपना दोष निष्पक्षपात से देखता है, क्या करके? मुमुक्षुता में आ करके, यानी मोक्ष का निर्धार करके, पूर्ण शुद्धि का निश्चय करके जो अपना दोष देखता है उनको पात्रता पैदा होती है, पात्रता उनको उत्पन्न होती है। ऐसे पात्र जीव में आत्मज्ञान के विषय का जो भी बोध मिलता है इसका बीज बोया जाता है। अब तो बीज की बात चलती है, बीज बोने के लायक वो होता है, बोध बीज के लायक होता है। इसके पहले कुछ भी करे बोध बीज के लायक नहीं है, वो सब बात बिना नींव की निकम में जाएगी, सब परिश्रम और शक्ति बर्बाद जाएगी।
क्यों क्रम क्यों?
ये पत्र सारा क्रम का है, मैं कहना भूल गया, ये पत्र सारा क्रम सूचक है। पहले क्या करना, पीछे क्या करना, फिर इसके पीछे क्या करना, फिर आगे क्या करना, फिर आगे क्या करना, वो अपने अनुभव से वो बात उन्होंने लिखी है। क्योंकि ऐसा क्रम से काम नहीं होगा तो जैसे हलवा बनाने में वो शेरा बनाता है ना अपने यहाँ, 3 चीज होती है, आटा, शक्कर और घी। लेकिन क्रम नहीं बराबर बैठता तो कोई कहता कि तीनों मिला करके लगा लो उसको चूल्हे पे,
नहीं होता
है,
नहीं होता है,
अग्नि पे उसको चढ़ा दो, 3 एक साथ मिला दो, तीनों बिगड़ेगा क्या? ना आटा खाने लायक रहेगा, ना शक्कर खाने लायक रहेगा, ना घी खाने लायक रहेगा, तीनों बिगड़ेगा। इसलिए क्रम से काम करना है, क्रम विपर्यास बनना हो जाएगा, वो क्रम विपर्यास से कभी कार्य सिद्धि होती नहीं है। हाँ, उसका क्रम है, पात्रता का क्रम यही है कि पहले सबसे पहले ध्येय को निश्चित करें, फिर अपक्षपात से अपना दोष देखें, या दोष देखते देखते ध्येय को निश्चित कर लें, फिर उसको बोध बीज योग्य भूमि का, आत्मज्ञान का बीज बोने की उसकी अवस्था पात्र होगी, लायक होगी। इसके पहले आत्मज्ञान की कितनी भी बात सुन लें, पढ़ लें, चर्चा कर लें, उसका बीज हम भी बोने वाला नहीं है, बीज भी नहीं आएगा, मैंने कुछ काम की चीज नहीं इसके लिए। तो आत्मज्ञान का जो विषय है वो समय सार आदि परमागम में मुख्यतया चला है, वो ऐसे बोध बीज योग्य भूमिका के पश्चात की बात है। अभी तो केजी में बैठने लायक नहीं है और कॉलेज का किताब पढ़ने को खोल के बैठ जाता है बच्चा, हाँ उसका प्रॉब्लम सब देखने लगता है, उसमें से कुछ उसको पता चलने वाला नहीं है। यहाँ स्वच्छंद प्राय दब गया है, मतलब बहुत योग्यता तैयार हो गई अच्छी तरह से, स्वच्छंद नहीं रहा। स्वच्छंद नहीं रहा तो क्या रहा कि अपने आप से कोई क्रम छोड़ के स्वच्छंद करके मोक्ष मार्ग में जाने का प्रयास नहीं करना है। जैसे ज्ञानी सत्पुरुष कहे उसकी आज्ञा के अनुकूल हमें चलना है, ऐसा उनको निर्धार होना चाहिए जब स्वच्छंद नहीं होगा। वरना तो मैं मुझे तो ये ऐसा करना है, मुझे तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है,
काम नहीं,
उसको तो कोई आगे की बात होने वाली नहीं है, वो स्वच्छंद से भरा हुआ है। तो जिसकी स्वच्छंद की हानि हुई है थोड़ी या बहुत कुछ भी और पात्र हुआ है, उनको फिर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, मैंने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, स्वानुभव की प्राप्ति, इसको रोकने वाले मुख्यतः तीन कारण होते हैं ऐसा हम जानते हैं। फिर आगे अभी क्रम बताना है कि फिर आगे का क्रम क्या है,
क्या है
अगर स्वच्छंद नहीं है
आगे
और मोक्ष का ध्येय बांधा है तो भी उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, इसका कारण देते हैं कि इसकी योग्यता को रोकने, अनुभव की योग्यता को रोकने वाले तीन कारण हैं। तो ऐसा हम जानते हैं, जानते हैं ऐसा मैंने, ऐसा हमारा अनुभव बोलता है,
सब जानते हैं,
है? अच्छी तरह जानते हैं। ये तो जैसे कोई हर स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कोई अपने अपने विशेष में स्पेशलिस्ट होते हैं ना, ऐसे कृपालु देव तो आज इनका जन्मदिन है ना, आज कृपालु देव का 127वां जन्मदिन है। 126 साल पहले मोरबी के पास, मोरबी से 30-32 किलोमीटर है भवानिया, छोटा गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। आज भी वहां एक तीर्थ स्थल जैसा बन गया है, जन्मधाम अच्छा बनाया है, निवृत्ति क्षेत्र है अच्छा। तो बहुत छोटी उम्र में, 7 साल की उम्र में तो पूर्व भव का ज्ञान हो गया, कितने
7 साल
की उम्र में जब वो छोटे बच्चे थे तो पूर्व भव का ज्ञान उसी वक्त उनको उत्पन्न हुआ। पूर्व भव का ज्ञान होने से फिर उनकी विचारधारा है वो चलने लगी, करे कहाँ कहाँ में भटका, कैसे जन्म हुआ, कैसा मरा, क्या क्या कैसे कैसा दुख पाया मैंने, क्योंकि संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, सब प्रकार का दुख का अनुभव, और धर्म के क्षेत्र में क्या क्या गलती किया, कैसा कैसा स्वच्छंद किया, अपनी मनमानी कैसे किया, ज्ञानी का आज्ञा में कैसे नहीं रहा, ये सब बात उनको समझ में आई। और पूर्व का भूतकाल में थोड़ी आराधना भी हो गई थी, तो आराधना कैसे हुई और आराधना से च्युत हुए तो कैसे च्युत हुए, ये सब बात का, और बहुत श्रुत ज्ञान का अभ्यास किया था, बहुत शास्त्र पढ़े थे
पूर्व में,
हाँ इधर में गए, इस भव में इधर में गए तो वहां बोले कि हम पूर्व भव में यहाँ आए थे, और इसका सबूत क्या दिया कि देखिए वहां 4-5 जिन मंदिर है आज भी, ये तो 125 साल हुआ है ना।
हाँ जी, बहुत बड़ा मंदिर है।
बड़ा मंदिर है, उसके जो पाठशाला है, शास्त्र भंडार है, उसमें द्रव्य संग्रह इधर पड़ा है, ले आओ, ऐसा करके बोला। द्रव्य संग्रह का पुस्तक मंगाया वहां से, इधर पड़ा है मैं जानता हूँ, क्योंकि वहां तो कोई पढ़ते ही नहीं थे। अब तो शास्त्र स्वाध्याय तो लोग भूल गए, तो ग्रंथ तो जहां का तहां रह गया, उन्होंने वहां से मंगाया था, वो सबूत दिया था। आज वो इधर जहां वो ध्यान करने को जाते थे, हम यह एक आश्रम बना है, बहुत अच्छा अपना आश्रम बना है, हम कभी कभी वहां निवृत्ति के लिए जाते हैं। तो ऐसे पूर्वभव का ज्ञान होने से, अनुभव पूर्वभव का सब उनके स्मरण में आया, और इस भव का और पूर्वभव के सभी अनुभव के पार होने के बाद उन्होंने ये सब बात निचोड़ करके मुमुक्षुओं को लिखी है, दी है। मैंने एक सामान्य पत्र नहीं है, ये सामान्य पत्र का ग्रंथ नहीं है, गुरुदेव को हमने पूछा था कि क्या कृपालु देव के वचनों में अखंड मोक्ष मार्ग है या नहीं है। बहुत प्रमोद से उन्होंने कहा कि अखंड मोक्ष मार्ग इसमें रहा है, ऐसी ही बात है, और ज्ञानी के वचन में मोक्ष मार्ग होता ही है, अज्ञानी के वचन में मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ज्ञानी का तो एक शब्द भी आगम है, एक शब्द आगम नहीं है, एक शब्द अनंत आगम है,
आगम भरा है,
ऐसा पाद गुरुदेव ने सम्मत किया था। क्या एक वाक्य नहीं, एक वचन नहीं, एक शब्द भी अनंत आगम है। गुरुदेव बोलते थे कि ये आत्मा, तो ये आत्मा शब्द में अनंत आगम भरा है, क्यों कि अनंत नयों का न्यायाधीश को स्पर्शती हुई वाणी निकलती है, अनंत नय की संधि उसमें लगी है, ऐसी बात है। तो ये सब पत्र नहीं है, लेकिन आगमों का निचोड़ है, और खास करके जिसको आत्मार्थता चाहिए, मुमुक्षुता चाहिए, इनके लिए प्रारंभ में ये पढ़ने लायक है। ऐसे गुरुदेव की भी आज्ञा थी, कोई भी नए नए मुमुक्षु आते थे गुरुदेव के पास या पूज्य बैंसरी के पास, वो पूछे हमको ग्रंथ तो अभी सोनगढ़ से चले जाएंगे, फिर हम क्या पढ़ें, हमको किस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। तो कहते थे श्रीमद् राजचंद्र पढ़ना, क्या पढ़ना, श्रीमद् राजचंद्र को पढ़ना। वजूभाई ने गुरुदेव, हाँ हाँ हाँ, वजूभाई भगवान छबीन
वाला,
हाँ
हाँ
हाँ, ठीक है। वो कहते थे बराबर मालूम है, आया ना पत्र में भी आया, आता इतने शास्त्र थे, फिर श्रीमद् जी का ग्रंथ क्यों कहा। ये हम लोगों को विचार करने लायक बात है कि शास्त्र तो बहुत है हमारे, सबके यहाँ अलमारियां भरी है, कबर्ड्स भरे हैं सब है, एक एक मुमुक्षु के वहां, फिर इस ग्रंथ को क्यों बोलते हैं। यही कारण है कि आत्मार्थी होने के लिए, पात्र होने के लिए, मुमुक्षुता होने के लिए बहुत से मार्गदर्शन उन्होंने दिया है अपने मुमुक्षुओं को, जो आज भी नए मुमुक्षुओं को काम में आने वाली चीज है वो अच्छी तरह जानते थे। इस बात को वो अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने यही बात कही। मुमुक्षुता का विषय है ना, गुरुदेव क्या है अपनी ज्ञान दशा में, ज्ञान दशा की बात बहुत किया है। अगर सत्पुरुष को पहचान करना है तो गुरुदेव की बात को बहुत पता, उसमें से बहुत मिलेगा। ये बार बार कहते हैं ना कि सत्पुरुष के चरण में जा, सदगुरु के चरण में जा, तो सत्पुरुष को पहचानना पड़ेगा, तो इसके लिए ज्ञान दशा की जो बात है गुरुदेव के प्रवचन में से मिलेगी। मैंने प्रयोजनभूत बात तो अपना पॉइंट कौन सा लेना है उसमें से, कि समय सार पड़े उसमें ज्ञानी की बात आई, बहुत ज्ञानी को पहचानना पड़ेगा, पहचानने से तो उसका फिर अनुसरण करने का भाव आएगा, तो स्वच्छन जाएगा, इसके पहले स्वच्छन जाएगा
नहीं।
ऐसे ये भी प्रयोजन की दृष्टि होता है, तो प्रयोजन का मुद्दा अपन को पकड़ लेते हैं, पकड़ लेना चाहिए। ये तीन कारण हैं, ये मुमुक्षुति की योग्यता को रोकने वाले कारण हैं। उस कारण को अपने आप में थोड़ा अवलोकन करके तलाश कर लेना कि इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा वो कब होती है। इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा कि संसार में भी कुछ सुख है, कहीं थोड़ा भी सुख है, ऐसा अभिप्राय जहां तक रहता है वहां तक कहीं न कहीं सुखेच्छा चालू रहती है। देखो अभी तो त्याग तो पंचम स्थान में होता है, अणुव्रत चालू होता है, मुमुक्षुता में कितनी तैयारियां होती है कि जिसको लोक के कहीं भी सुख की अल्प भी अभिप्राय वाली इच्छा नहीं रही, उनको सम्यक दर्शन के आगे सम्यक दर्शन में पहुंचने के लिए कुछ योग्यता मिलती है, और जहां तक यह नहीं होता वहां तक सम्यक दर्शन के योग्य नहीं होते, अविरत सम्यक दर्शन के योग्य नहीं होते। वृत्ति की बात तो पीछे है। तो ये बाह्य त्याग के पहले अंतर त्याग कराते हैं, अंतर त्याग हुए बिना बाह्य त्याग निमित्त भूत भी होता नहीं है, और अंतर त्याग के निमित्त भूत होने के लिए बाह्य त्याग दर्शाया है। तो पहली तो तैयारी करें, पहले तो गंदगी तो उठावे नहीं, और फिर अत्तर का स्प्रे लगाए हैं, तो ये तो कोई उसकी वो तो बेकार जाने की बात है, उस काम में आने वाली बात
नहीं है,
नहीं है।
वहां रहता है
पूर्णता का लक्ष्य के बाद स्वच्छंद हानि प्राय हुआ है उसके बाद ये होता है। ये कहीं सुख है, अनुकूलता में सुख है, उतनी अनुकूलता में सुख है, ये सुख की गंध जानी बहुत मुश्किल बात है। क्या कहना चाहते हैं कि जीव को संसार के सुख की गंध रह जाती है, इतना होने के बाद भी गंध रह जाती है, ये गंध जाने वो गंध नहीं जाएगी वहां तक मुमुक्षुता को अवरोध है। क्या है मुमुक्षुता को ये अवरोध, ये पहला लिखा है, इसका मतलब कि ये मेन ऑब्स्टेकल है, तो बड़ा अवरोध है, ये अवरोध जाएगा फिर को थोड़ा काम आगे बढ़ने वाला है, इसके पहले बढ़ने वाला नहीं है।
बड़े पर सवाल या नहीं,
हाँ। आत्म सुख भी चाहिए और पुद्गल सुख भी चाहिए, तो पुद्गल सुख तो सुख है नहीं, वो तो भ्रांति है अनादि की, तो बात बनती
नहीं है,
एक दुख है एक सुख है, दुख भी चाहिए और सुख भी चाहिए, साथ में नहीं रह सकता, दुख रहता है वहां सुख नहीं रहता, सुख रहता है वहां दुख नहीं रहता, ये बात है। एक तो ये कारण है, दूसरा परम दीनता की न्यूनता, सद्गुरु सत्पुरुष मिलने पर भी उसका जो विनय है वो पूरा नहीं आता है, सत्पुरुष के प्रति अविनय चालू रहता है, उसको अविनय कहते हैं, न्यूनता को अविनय कहते हैं। या इसमें क्या धोखाबाजी है कि हम तो मानते हैं गुरु को, मानते नहीं, हमने तो इतना समर्पण किया था, इतना दान दिया था, जब गुरुदेव प्रतिष्ठा में पधारे थे तो इतना समर्पण हमने कर दिया, ऐसा नहीं है, परम विनय मैंने क्या, परमेश्वर बुद्धि आवे सत्पुरुष में तभी उसको परम विनय कहने में आता है। जितनी भक्ति बुद्धि परमात्मा में जिनेन्द्र देव में होती है उतनी सत्पुरुष में होनी चाहिए, और प्रत्यक्ष होवे तो इससे भी अधिक होनी चाहिए। क्योंकि सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव तो परोक्ष है, अभी उन तो प्रत्यक्ष है नहीं इस काल में। अगर सत्पुरुष प्रत्यक्ष है तो जिनेन्द्र से भी अधिक परमेश्वर बुद्धि इसमें आनी चाहिए, आती है। जिसको आती है उसको सम्यक दर्शन होता है, दूसरे को नहीं होगा, ऐसी बात है। सुगानी जी ने क्या लिखा, गुरुदेव मेरे लिए अनंत तीर्थंकर से भी अधिक है। बराबर से नहीं लिया, अधिक लिखा है, सही लिखा है क्या?
एकदम सही
है। नहीं, अनंत तीर्थंकर, एक एक तीर्थंकर से नहीं, 24 तीर्थंकर से नहीं, अनंत तीर्थंकर से अधिक बोले। गलती किया या सही लिखा है? क्या लिखा
है? सही लिखा, एकदम
एकदम सही लिखा है, ऐसी बात है। गुरुदेव ने पढ़ा वो बात, मना नहीं किया। देखो कितनी भक्ति है इसको, और ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि अनंत जन्म मरण से बचाया, अनंत तीर्थंकरों के समुद्र में हम गए, नहीं बचे। और इधर बच गए तो अनंत तीर्थंकर से अधिक काम हुआ कि नहीं हुआ, उसको परम विनय कहते हैं। और जो नाप जोख लगाता है भगवान की भक्ति इतना करना, और फिर छठे गुण स्थान वाले गुरु की उतनी करना, और फिर चतुर्थ गुण स्थान में की उतनी करना, ऐसा जो फुटपट्टी लगाता है वो इस बात को समझता नहीं है, उसकी समझ में बात ही नहीं आई है। ये तो त्राजवा काटला लेकर के बैठा है, जोख भक्ति को जोखता है। जोक तोल जोक से कोई भक्ति तोल माप से होती नहीं है, नहीं भक्ति नहीं होती, ये सब गड़बड़ है, विपर्यास है, सब विपरीतता है, बड़ी विपरीतता है।
बीस दोरों के पहले 19 कड़ियों में तो अपने दोस्तों का निवेदन किया, 20 में हम मांगे ही पड़ी पड़ी कुछ पद पंकज मांगू, ये संत स्वरूप कुछ दृढ़ता करेंगे। प्रभु भगवान से प्रार्थना की, सदगुरु वही है, संत है, वही तेरा स्वरूप है, ये तो मुझे कर दे।
मुझे तो भगवान को पास क्या मांगता है कि तुम सदगुरु को दे मुझे।
अब ये मान रहे तीर्थंकर मिले तो भक्ति करें, तीर्थंकर मिले तो भक्ति करें,
वरना भक्ति ये नहीं करनी है, इसका मतलब ये हो गया। उसको वे डूबता है उसका पता नहीं है, संसार सागर में के मध्य में डूबता है इसका पता नहीं है। ये तो लकड़ा आया, जाने दो, स्टीमर आएगी तो बैठूंगा मैं, कि तुझे डूबना ही है, तुझे मरना ही है, अभी तुझे जिंदा रहने का लक्षण नहीं है, ऐसी बात है। ये अंतर है तो ये आपस में इन तीनों के बीच में है, तेरे लिए कुछ अंतर नहीं है, तेरे तो निमित्त तो एक सा ही है। जो निमित्तत्व तीर्थंकर में होता है, जो छठे गुण स्थान वाले में होता है, वो ही सत्पुरुष में होता है। निमित्तत्व एक सा होता है, चाहे स्टीमर मिलो, चाहे होड़ी मिलो, चाहे पेड़ का थड़ मिल जाए, पेड़ की डाली मिल जाए, डूबने वाला तो पूरा पूरा बच जाता है, उसमें कोई आधा डूबा और आधा बच गया ऐसा होता नहीं है। तो निमित्तत्व तीनों में सरखा है, इसकी उपादान की गिनती तू क्यों करता है? तेरे तो निमित्त का संबंध है, तेरे उपादान का क्या संबंध है? तुझे तो निमित्त का संबंध है, अपना मतलब को तू समझता नहीं है,
अपने उपादान को खोड़े,
हाँ अपना उपादान को देखता नहीं है, दूसरे को उपादान को देखता है। जिसका दूसरे का दोष देखता है वो क्या करता है? दूसरे का उपादान को देखता है, ये देखने की चीज नहीं है। दूसरे के साथ निमित्त नैमित्त संबंध है तो निमित्तत्व को देख, ऐसे सत्संग करने लायक है कि नहीं है बस उतना देख, उसका इतना निमित्तत्व है कि नहीं उतना देख बस। और तीसरा लिया है
पदार्थ का
निर्णय, ये मैंने भाव भाषण का विषय है। ये दो प्रकार की योग्यता हो जाती है तो तीसरा पदार्थ का भाव भाषण होता है, अपने मूल स्वरूप का भाव भाषण होता है, और यही सम्यक दर्शन का अनन्य कारण है, एकमात्र कारण है। गोपाल देव ने 751 के पत्र में उसको दूसरा संकित बोला है, संकित का कारण में कार्य का उपचार करके उसको संकित बोल दिया है। ये तीन बात जो है जिसको बनती है वो पूरा मुमुक्ष उत्कृष्ट कोटि का होता है, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है।